سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پڑھے لکھے جیالے میاں ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، ایک بار ہم آپ کو ادھر آپ کی آواز پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے الحمدللہ، اور بڑے تجزیات اور جناب دین کی باتیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ کو اور تمام دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ رحمتیں آ رہی ہیں اور رحمتیں لوٹیں گے رائے صاحب۔
میاں صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ لاہور سے نکلی ہوئی ہے اپنے کارکنان کے ساتھ، حمزہ اور مریم کی قیادت میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں خود اسلام آباد آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ کل انہوں نے اپنا جلسہ کرنا ہے، تو آج وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کا سمندر ہے اسلام آباد تقریباً جو ہے وہ بلاک ہونے جا رہا ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
رائے صاحب، اس طرح ہے کہ دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ یہ اب ٹائم اس طرح کا آ گیا ہے کہ سب سے پہلے بات تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو جب سے یہ حکومت آئی ہے تو 3.5 سال 4 سال سے یہ ساری جو نا سیاسی گرمی کہہ لے، اب جو وہ اسی وقت سے شروع ہے، لیکن عوام کو عمران خان صاحب کے اوپر کچھ اعتماد تھا، وہ امیدیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ امیدیں جو نا ان کے اوپر آہستہ آہستہ پانی پھر گیا، جو نا کوئی ایک بھی چیز جو سامنے نہیں آئی۔ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، پاکستان الحمدللہ مادر وطن پاکستان اقوام عالم میں ایک اس کا مقام ہے، پاکستان کا مسلم امہ میں ایک مقام ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کا ایک خطے کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے ایشیا میں۔ تو اختلافات اپنی جگہ دور رکھ کے ایک دیکھیں، عمران خان صاحب جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ کوئی کسی تھانے کا ایس ایچ او نہیں ہے، وہ کسی ضلع کا کلیکٹر نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب ٹھیک ہے، جب وہ کرکٹ کے میدان میں ہوتے تو آپ کے ساتھیوں کو گالیاں نکالتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، کہتے رہتے۔ دیکھیں، اگر کوئی لوکل انٹرویو ہو، گالی گلوچ، اگر کوئی انٹرنیشنل صحافی بیٹھا ہو، گالی گلوچ، اگر کوئی اسمبلی کا بیان ہو، گالی گلوچ، ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنا جلسہ کر رہا ہو، گالی گلوچ۔ اس سوائے گالی گلوچ کے، رائے صاحب، گالی گلوچ کے کچھ نظر نہیں آیا 3.5 سال میں۔ تو اب عوام، آپ نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں تو ہاں ٹھیک ہے، وہ تو لیڈر ہیں، وہ تو اصل میں یہ عوام باہر نکلی ہے، عوام تنگ ہے، عوام یہ بالکل حقیقت ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے دیکھیں، جو جیسے بھی تھے حالات تھے، عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا تھا لوگوں نے، اور اپنی اس میٹھی میٹھی زبان سے جو نا لوگوں کو بیوقوف بنا دیا تھا۔ تو ظاہر ہے لوگ تو مجبور ہیں بےچارے، پاکستان میں لوگ تو ہمیشہ اپنا کوئی نہ کوئی مسیحا ڈھونڈتے ہیں، نہ ہی وہ تو کیا کہتے ہیں، نہ ہی وہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ ہی وہ مکان ملے، نہ ہی وہ، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہو گئے۔ تو آج جو ہے نا، یہ سیاسی لیڈر تو ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ساری پارٹیاں، یہ عوام آ رہی ہے رائے صاحب باہر، عوام آ رہی ہے، تو عوام اور کیا کرے، ہم
صاحب عوام آ رہی ہے، تو پھر عوام جو باہر نکلی ہے، یہ تو پھر عمران خان کے ساتھ نکلی ہے نا؟
نہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں نکلی۔ رائے صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے شاید آپ میں اس بات کو چھیڑ لیتا ہوں، عدم اعتماد کی آپ اگلا سوال کریں گے۔ دیکھیں، اب یہ بات صرف ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو، ایک طرف تو دیکھیں، اب 2 ماہ سے 3 ماہ سے یہ عدم اعتماد کی جو سیاسی سرگرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، عدم اعتماد کو یہ عوام کو دوبارہ بیوقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ، صرف ایک کیا کہتے ہیں نا، شیش چلی کی طرح بڑکے مارنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے، اس سے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عدم اعتماد رائے صاحب ہو چکا ہے، अगर आपका नेक्स्ट सवाल यही था, क्योंकि इसकी कड़ी मिलती है आपके सवाल से, अदमे एतमाद तो हो चुका है 36 लोग प्लस इतिहादी। अच्छा अब जो आप देखें ये हथकंडे जो ना अछूते हथकंडे, आपको पता है कि कल या परसों इजलास हुआ था वो दुआ मांग के, तो जल्दी जल्दी जनाब पहाड़ा पड़ के तो इजलास खत्म कर दिया। अच्छा फिर देखे राय साहब के ये जो 63 की तशरीह मांग रहे हैं, 63 की तशरीह मांग रहे हैं अदालत से, यही वो अदारा है, यही वो एक पार्लियामेंट है जिसने ये कानून बनाया, तो ये तो सारे बहाने। हाँ अब इस टाइम को टालने के लिए, इस वक्त को गुजारने के लिए और अवाम को, अवाम के सामने आके अवाम को फिर कोई लालच देने का, अवाम अवाम इनके पीछे नहीं है। अब आपने कहा कि इमरान खान जलसा कर रहा है, वो तो एक इतनी बहुत बड़ी रैली जो है ना वो हमजा शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज के साथ भी जा रही है, वो तो फजल रहमान भी इतनी फौज लेके आ रहा है, वो तो बाकी जमातें भी आ रही हैं। हाँ एक बात जरूर है, एक बात मेरी आपकी और आम आवाम की, हम सब की एक बात जरूर है कि ये बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा है राय साहब इस्लामाबाद में, और अल्लाह ताला रहमत, ये देखें ये हालात, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक तरफ तो इतनी सियासी सियासी गर्मा गर्मी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ जनाब ये एक जो वजीर आजम है, जो हुकूमती पार्टी है, वो सिर्फ वो जो ना हथकंडे इस्तेमाल करके वो उधर
मियां साहब जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में सारी चीजें चलती हैं,
जमहूरियत में सर सारी चीजें चलती हैं, तो जमहूरियत मतलब तो ये है ना कि फिर तरीकेकार तो ये था ना कि ठीक है एक देखें जो अतमाद का वोट है वो भी तो वजीर आजम, वो तो भी एक जमहूरी तरीका है ना, तो जमहूरी तरीका तो यही था ना कि ठीक है इमरान खान साहब उसी वक्त कहते हैं जी ठीक है मैं अतमाद का वोट लेता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ठीक है ना। कभी जनाब
चले मियाँ साहब इधर आते हैं, मियाँ साहब देखें चौधरी बरादरान बड़े वजादार सियासतदान है, बड़ी पावर है उनके पास, 5-6 उनके पास मेंबर है, लेकिन उन्होंने दाता दरबार के बाहर कपड़ा बिछाया हुआ है, जो भी इसमें वजारत आला डालेगा उसके साथ हम चले जाएंगे।
देखे राय साहब हाँ ये देखें ये तो उनकी अपनी पार्टी है, उनका जो काफ लीग का जो देखें जो हमेशा से ये हुआ है वो तो सबको पता है कि उन्होंने एक सियासी रिश्वत लेने के बगैर उन्होंने ना किसी के साथ जाना है। हाँ अब देखें कल सोमवार है, कल हाँ मेरे ख्याल में आज शाम को ये आपने चौधरियों को नाम लिया, आज शाम को मेरा ख्याल ये वो सारा कट्ठा कट्ठी निकाल देंगे कुछ ना कुछ, तो मुझे तो जो भी उनको उनकी झोली में जो पड़ा होगा, जो भी उनको मिला होगा वो शाम को पता चल जाएगा। कल मैं अब दोबारा वही अर्ज करता हूँ ना जी कि देखें इतिहादी हैं, उन्होंने कई दफा उन्होंने तो इसी काफ लीग ने कई दफा मीडिया के ऊपर ही आके ऐलान किया ना कि हम ये नहीं चाहते, हम बदलना चाहते हैं, हमें यह काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि कल सोमवार को पता चल जाएगा। अब राय साहब अब बात इस तरह है कि कल सोमवार को या परसों या किसी और दिन अदम-ए-एतमाद हो या ना हो, वोटिंग हो या ना हो, ये बात कोई मैंने नहीं रखा थी। अब चौधरी बरादरान अपनी सियासी रिश्वत लेके इनके साथ आ जाए, कोई MQM आ जाए या कोई और आ जाए या कोई जो वो जो जहाज पर बैठने वाले थे वो आ जाए, क्योंकि अब इस बात का जो है ना वो कोई इस बात का कोई फायदा नहीं।
मियां साहब इधर आते हैं, कोपेनहेगन में आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। मियां साहब 23 मार्च को पाकिस्तान एम्बेसी में एक प्रोग्राम हुआ, बड़ा बोर प्रोग्राम था, बच्चों के प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें नज़र नहीं आई, पता चलता था कि हमारी लाइफ का सबसे बोर तीन प्रोग्राम जो 23 मार्च के हवाले से था, को लगता ही नहीं था कि आज 23 मार्च है, बस कोई सियासी लीडरान भी नहीं थे, चंद मखसूस लोग थे, तादाद भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 120 बंदों का या 110 बंदों का खाना भी मंगवाया गया और हमारी गवर्नमेंट का सरकारी फ़ंड जो है वो इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद हासिल क्या हुआ, चंद जो है वो असनाद दी गई मुख्तलिफ लोगों को, बच्चों में तकसीम की गई, और उसके बाद जो है वो मेला जो है वो ख़त्म हो गया, बोरिंग प्रोग्राम था। लेकिन चूंकि 23 मार्च हमारी पाकिस्तान एम्बेसी हमारा घर है, वो घर तो हमें बहुत प्यारा है, बहुत घर अजीज़ है, इसके अलावा 23 मार्च को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, इसी तरह पीटीआई के टाइगर ग्रुप ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन जो इस वक्त जीते हुए लोग हैं इंसाफ पैनल वाले, वोटे ने 1400-1500 ली, इनके 15-20 बंदे पाकिस्तान गए हुए थे लेकिन 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम नहीं कर सके, क्या ये डर रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे अदम एतमाद में और आपकी वजारत आला जो है वजारत उजमा जो आपके पास आ रही है?
जी राय साहब, आखिरी सवाल जो आपने किया ना उसको सबसे पहले लेते हैं। देखें पीटीआई वाले जाहिर है उनकी हुकूमत है वो बेचारे, मैं अदना सा आदमी हूँ लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी पहली रिकॉर्डिंग निकाल लें, अब भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि जो पीटीआई वाले जो अवाम है ना जी, खास तौर पे चलो ऐसा ही सही, जो डेनमार्क के पीटीआई वाले लोग है ना वो बड़े मुहिब वतन है, उनकी मुहिब वतनी पे कोई शक नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन नदान है, लेकिन नदान है। अच्छा वही फिर वही बात आ गई, नदान किस लिए है, मैं मदद करता हूँ, इसलिए है कि देखें अब 23 मार्च का ही आपने प्रोग्राम लिया कि वो भाई जो है ना अभी मिलते रहते हैं, जुमे वाले दिन भी मिले थे, सारे हमें मिलते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, तो खुद आपका जो है आपने मेरे ख्याल में ये पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया, मैंने वो सारे इंटरव्यू सुने हैं, मेरे ख्याल में आपने ये बात सबसे पहले मेरे से की है, मैंने आपके रेडियो के ऊपर किसी से ये सवाल नहीं सुना। देखे ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ से ठीक है, इनका इनके अंदर मोहब्बत थी, ये गए थे अपने ब्रिगेडियर आजम साहब को मिलने के लिए गए थे, तो इनके साथ जो इनके साथ वहां सलूक हुआ राय साहब, बात यह है कि जो बंदा अपने घर के साथ मुखलस नहीं है, अपने माँ बाप के साथ जो ना मुखलस नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ मुखलस नहीं है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मुखलस नहीं है, अपनी पार्टी के साथ मुखलस नहीं है, 2018 से के इलेक्शन से लेकर सबसे पहले तो उन लोगों को बेचारों को जिन्होंने इत्माद किया था उनको इमरान खान ने जो है ना पीछे किया, उनको दलील किया, तो अपने हफ्से इकतदार इस अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए वही चोरों डाकुओं को जो है ना जिनका नारा लगा के आया था उनको टिकट दिए, फिर कबीना बनाई, वही चोर डाकू अपने साथ साथ बैठा लिए, अब जो है ना अब यानी कि देखो अब बात करते हैं डेनमार्क के जो हमारे भाई पीटीआई वाले वो क्यों गए थे, वो इसलिए गए थे ना कि हमारा वतन है, हमारी हुकूमत है, आपने रेडियो आपकी आवाज पर राजा अब्दुल गफूर साहब आपने जितने भी इंटरव्यू किए थे मैंने वो सुने हैं, जहां तक मुझे याद है वो सारे पीटीआई के जाले थे, और पीटीआई के जालों ने खुद ही अपनी कहानी बयान किया कि वहां हमें किसी ने घास नहीं डाला, हमें वहां किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी, हम गए किसी और काम के लिए थे, ठीक है ना, इतनी उन्होंने इनको अहमियत दी। बाकी राय साहब ये तो ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, मैं पीटीआई के लोगों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई के लोग थे, पढ़े लिखे थे, मुहिबे वतन थे, वो मुहिबे वतनी अपने साथ रख के पाकिस्तान गए थे, वज़ीरे आज़म साहब को मिलने गए थे, लेकिन वो उन्होंने रो रो के अपनी कहानी बयान की है। तो बाकी राय साहब दूसरी बात ये है कि बाकी तो फिर कई लोग तो फिर वो मरासियों की तरह जैसे मर्जी कहते रहे, जी 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 करते रहे, झूठ बोलते रहे, वो तो फिर जो ना
मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब देखें वर्कर को देखें, यहाँ डेनमार्क में एक नौजवान जो है वो सियासतदान है, साबका सिटी काउंसलर हैं, सोशल वर्कर हैं, तालीम के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, अभी भी वो स्कूल टीचर है, उर्दू पढ़ाती हैं, तालीम से वो मुंसलिक हैं, और सबसे जो पहले बच्चों में सियासतदान आई हैं वो मोहतरमा लुबना इलाही साहब है, उनको पीटीआई ने जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने उनको जो है वो अपना को क्या कहते हैं कि अपना मशीर मकरर किया डेनमार्क में, आप क्या कहते हैं?
लुबना इलाही साहब की बात कर रहे हैं ना राय साहब?
जी जी
जी राय साहब देखे यहाँ तक मैं अपने कमीशन के बारे में दूंगा, मैं मुझे 32 साल हुए पाकिस्तान यहाँ डेनमार्क आए हुए, मैं अभी पाकिस्तान ही था, यहाँ डेनमार्क में आया ही नहीं था, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में बैठा, मैं लुबना इलाही मोहतरमा की तस्वीरें देखता था, मैं मुझे पता चलता था, जाहिर आपको पता मेरी भी फैमिली इधर है, ठीक है ना, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी, इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, ये शुरू से बचपन से ही जो है ना इनका जो एक जेन है ये खिदमत खलक के लिए इन्होंने काम किया है, लुबना इलाही साहबा ने, ठीक है ना, और हमेशा जी एक्टिव रही हैं, तो किस प्लेटफॉर्म से भी इन्होंने काम किया, किस कहीं ना कहीं से ये काम करती रही हैं। तो आज फिर मौजूदा जो है इन्होंने कश्मीर पर काम किया है, इन्होंने जनाब यानी कि हर इन्होंने जो ना क्या कहते हैं दरसो तदरीस का काम शुरू किया है। आज उनको जो यहाँ जो उनको जो पोस्ट मिली है तो उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बेशक वो जिस मर्जी पार्टी से मिली है, मुझे कता नजर मुझे इससे कोई तलक नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर पर लुबना लाई का जरूर पता है कि मोहतरमा लुबना लाई साहबा जो है ये खवातीन में से पाकिस्तानी कम्युनिटी में से एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा हिस्सा है इनका, इन्होंने काम किया है और वो जज्बा रखती हैं, बावजूद इसके कि वो उम्र सीधा हो गई हैं, बीमार हैं, अकेली रह गई हैं, खामद अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो एक्टिव हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा मुबारक देता हूं और मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से और अपनी जनाब फैमिली की तरफ से मैं जनाब ये ऑफर भी देता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ होंगे इंशाल्लाह।
मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश।
समय ये थे मोहतरम मियाँ जहीर साहब जो कि अपनी खुलकर बात कर रहे थे, उन्होंने आखिर में लुबना इलाही साहिबा के लिए बड़े अच्छे अल्फाज के, इसमें कोई शक नहीं है कि लुबना इलाही साहिबा जो है वो बचपन से जो है वो सियासत में रही, इनके वालद साहब चूँकि सियासी घराना है तो इनको अपने वालद साहब की तरफ से भी एज हासिल था, लेकिन उन्होंने भी अपना एक्टिव रोल अदा किया और सियासत में रहीं, काफ़ी अरसा सिटी काउंसलर रहीं और डेनमार्क में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली वो भी सिटी काउंसलर हैं, जो बिल्कुल जो है वो मेयर की सीट से बिल्कुल करीब से गुजर कर गई। बहरहाल ये नशीब व राज सियासत में चलते रहते हैं। अब उन्हें जो है कश्मीर के सदर साहब ने अपना डेनमार्क में जो अपना मशीर मुकर्रर किया है और ऑफिशियल किया, उनका लेटर भी बाकायदा इशू हुआ, उनका बाकायदा कार्ड भी बन गया, ऑफिशियल तौर पर इनको सीट मिली है, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं।